प्यारी बाबा के मधुबन घर में जब हम आते हैं तो स्वयं के अंदर जहां तक हो सके उतना पुरुषार्थ कर हम अपने में शक्ति भरते हैं। बाबा ने समय प्रति समय हमें अनेक विधियां स्वयं की उन्नति के लिए बताई हुई है और स्वयं की स्थिति को ठीक करने के लिए भी बाबा ने बहुत से तरीके हमको सुनाए हुए हैं और रोज मुरली में सुनाते भी रहते हैं। कुछ वर्ष पूर्व बाबा ने अव्यक्त मुरली में इस बात का वर्णन किया, चार धाम की यात्रा। यूं तो हम भारतवासी अधिकतर इस बात को जानते हैं कि जो भक्त लोग हैं भक्ति मार्ग में चार धाम की यात्रा को बहुत महत्व देते हैं। और वो चार धाम कौन से हैं आपको मालूम होगा, एक बद्रीनाथ है, एक रामेश्वरम है, द्वारकाधीश है और पुरी। ये चार हैं जिनको चार धाम माना गया है और इसके अलावा छोटे धाम भी माने जाते हैं। छोटे चार धाम वो हैं केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। तो ये जो चार धाम हैं, बाबा ने जब कहा कि चार धाम की यात्रा किया तो जो भी थे वो चार धाम कौन से हैं? दुनिया में लोग समझते हैं कि चार धाम की यात्रा अगर हमने कर ली तो हमें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा और इसीलिए वो चार धाम की यात्रा को बहुत महत्व देते हैं। और यहां हमें मालूम है कि जब हम बाबा के बने तो हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा अधिकार के रूप में प्राप्त हो गया। लेकिन फिर भी बाबा ने चार धामों की यात्रा हमें करने को कहा। अब हम बीकेस के चार धाम कौन से हैं, जो पांडव भवन में ही है चार धाम, क्योंकि ये भूमि साकार की कर्म भूमि और चरित्र भूमि रही। यहां से जन जन तक, देश विदेश तक बाबा का संदेश अनेकानेक आत्माओं को पहुंचा। तो इस पांडव भवन में ही चार धाम हैं और जिसका वर्णन बाबा ने किया था, और वो चार धाम हैं हमारा शांति स्तंभ, हिस्ट्री हॉल, बाबा का कमरा और बाबा की झोपड़ी। इसको बाबा ने चार धाम कहा। तो जब आज सुबह ये होमवर्क दिया गया कि आज आपको चार धाम का महत्व लिखना है तो कईयों के मन में ये सवाल आया कि इसका महत्व क्या है, हम नहीं जानते, या जानते भी होंगे तो इतना बुद्धि में स्पष्ट नहीं है। वास्तव में देखा जाए मधुबन आने पर तो हम फिजिकल रूप से अर्थात खुद वहां जाके इन चारों धामों की यात्रा जरूर कर लेते हैं। शांतिवन में भी जब आते हैं तो एक दिन अवश्य ऊपर आके, चाहे एक मिनट ही सही, क्योंकि तो जब भी आओ यहाँ पर इतना क्राउड होता है, कभी टाइम मिल पाता है कभी नहीं मिल पाता है। बहुत बार ऐसा होता होगा कि जब हम आते हैं यहाँ पर, जाओ तो कमरा फुल है, झोपड़ी फुल है बहुत और लोगों की लाइन लगी हुई है, तो बहुत ज्यादा वक्त नहीं मिल पाता कि वहां बैठ के जो अनुभव बाबा ने हमें कहा था शायद वो अनुभव लंबे समय तक, लंबे काल तक हम कर सके। लेकिन फिर भी यहाँ आना अच्छा लगता है, अनुभव करना वो अच्छा लगता है। वो एक मिनट का भी उस स्थान पर जाना हमारे लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होता है। तो मधुबन में तो हम ये चार धाम कर ही सकते हैं जब आते हैं, लेकिन जब हम अपने अपने सेवा स्थानों पर हैं, प्रवृत्ति में रहने वाले भी जो अपने प्रवृत्ति में रहते हैं उनके घर भी उनके लिए सेवा स्थान ही है। बाबा ने इसको शुरू से ही कहा है कि लौकिक घर को घर ना समझ अपना सेवा स्थान समझो। तो जब हम उन सेवा स्थानों पर रहते हैं तो वहां रहते हुए भी इन चार धामों की यात्रा हम कर सकते हैं, क्योंकि मन बुद्धि से ये यात्रा की जा सकती है। मन इतनी ऊंची उड़ान भरता है कि हम अपने मन के द्वारा इन स्थानों पर पहुंच सकते हैं। और इनका महत्व तो क्या है, बीके लाइफ में हमको ऐसा लगता है कि बाबा ने कुछ वर्ष पहले ही कहा, जब बाबा के नए नए बच्चे बहुत सारे आ चुके थे, तो जरूर बाबा इस बात को जानते हैं। तो इसका बीके लाइफ में महत्व तो क्या है, क्योंकि आज जो पालना का समय है, जो पालना थी, आपको मालूम है जब शुरू शुरू में माउंट आबू में आए, छोटा सा वो ईश्वरीय परिवार था, छोटा सा वो डिवाइन फैमिली, और बाबा के साथ सब ऐसा अनुभव करते थे जैसे एक परिवार में बच्चे अपने माता पिता के साथ। बाबा उसी प्रकार से हमारी पालना किया करते, वैसा ही हमें प्यार दिया करते। कुछ साल तक तो वो चलता रहा, बाबा अव्यक्त हुए, दादियां उन्होंने भी अपनी रीति से बहुत पालना दी और अनेकों को उसकी भासना आई, लेकिन हम जानते हैं अभी वर्तमान समय हमारी कितनी दादियां हैं, और वो दादियां भी गिनती की, और उनकी भी इस समय शारीरिक स्थिति किस प्रकार की है। मन से तो वो बहुत पावरफुल है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चार धाम है, अगर हमें ईश्वरीय पालना का अनुभव करना है तो इन चार धामों के द्वारा हम बहुत खूब कर सकते हैं। केवल हमारी मनोस्थिति कैसी है, उस मन में उस समय मेरे क्या विचार चल रहे हैं, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन अगर आप जैसे बाबा के कमरे में जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे बाबा बड़े प्यार आपको बहुत प्यार कर रहा है। कई भाई बहनों का अनुभव है, उनको ऐसा लगता है कि जैसे बाबा सचमुच हमारे पीठ पर हाथ फेर रहा है या सिर पर हाथ फेर रहा है। ऐसे बहुत से अनुभव बहुत से बाबा के बच्चों के हैं, लेकिन मेरी मनोस्थिति कैसी है ये उसके ऊपर निर्भर करता है। इसीलिए बाबा ने जब चार धाम की बात कही थी तब बाबा ने कहा था कि बच्चे अगर समान बनने का संकल्प हो तो कहाँ आ जाओ, बाबा के कमरे में आ जाओ, क्योंकि ये बाबा का कमरा मुझे बाप समान बनने की प्रेरणा देता है। आज जहाँ तहाँ आप देखिए, बाबा के अव्यक्त होने से पहले सेंटर्स पर इस तरह से बाबा के कमरे नहीं हुआ करते थे। ये बाबा का जो कमरा बना वो बाबा के अव्यक्त होने के बाद ही बना। तो आज वो चित्र, भले वो उसका कोई भी किसी भी पोज में हो, लेकिन वो चित्र हमें किस चीज की प्रेरणा देते हैं, वो हमें अव्यक्त बनने की, फरिश्ता बनने की प्रेरणा देते हैं। और इन चित्रों का वर्णन समय प्रति समय दादी जानकी बहुत अच्छा करती हैं। तो अगर वो सब चीजें मेरी बुद्धि में रहती हैं, मन में रहती हैं, और हम एकदम सब संकल्पों को बाहर रख के, कोई भी मन के अंदर मन में कुछ भी संकल्प चल रहा हो उन सबको बाहर रख के बाबा के कमरे में जाके बाबा के सामने बैठ जाएं, तो आपको वो अनुभव होगा सचमुच बाबा मेरे सन्मुख है, बाबा मुझे पालना दे रहे हैं, बाबा मुझे प्यार और दुलार दे रहे हैं, बाबा मुझे आगे बढ़ने के लिए कोई शिक्षा दे रहे हैं। इस तरह की ईश्वरीय पालना का अनुभव और बाबा के प्यार का अनुभव और बाप समान बनने के लिए मुझे क्या करना है, ऐसी प्रेरणाएं हमें बाबा के कमरे से मिलती हैं। और जब हम इन चारों धामों में जाएंगे तब हमारे मन में, ये तो मैंने खाली आपको बाबा के कमरे की एक बात बताई, चारों ही धामों में आपको ऐसा अनुभव होगा एक ईश्वरीय पालना का। और दूसरी बात, हमको ऐसा भी लगता है अगर इन चार धामों में हम सैर करते रहें, भले हम कोई भी स्थान पर हैं, तो जो कभी कभी हमारे मन में ऐसा लगता है हमको कि हम जाएं, हम भी कितना अच्छा होता, हम साकार के समय होते, कितना अच्छा होता हमने दादी की पालना ली होती, कितना अच्छा होता तो जब जो बाबा जैसे बच्चों को ले जाया करते थे वैसे हम भी जाते, उस समय हम भी होते, तो वो जो फीलिंग हमें कभी कभी आती है और अंदर में लगता है कि शायद समथिंग इज लैकिंग, कुछ कुछ कमी है, मुझे कुछ मिलना चाहिए, तो हमको ऐसा लगता है जो चार धाम की यात्रा ये करेगा तो उसको इस कमी के अभाव के किसी भी प्रकार के ईश्वरीय पालना के अभाव की फीलिंग उसको नहीं होगी। इसीलिए इन चारों धामों की यात्रा करना बहुत जरूरी है। तो बाबा के कमरे में जाना माना बाबा के समीप आना, उस अव्यक्त बाप दादा के समीप आ जाना, उनके समान बनने की प्रेरणा प्राप्त करना, उनसे प्यार और दुलार लेना, इस तरह की फीलिंग हमें बाबा के कमरे में जाने से आती है। दूसरी बात, बाबा ने कहा था कि बच्चे जब मन कभी बड़ा उदास हो जाता है, क्योंकि हम प्रवृत्ति में रहते हैं, हम राजयोगी के साथ कर्मयोगी भी हैं, और जब कर्म में आते हैं तो अनेक प्रकार की आत्माएं, विभिन्न विचारधारा वाली, विभिन्न प्रकार की वृत्तियों वाली आत्माएं हमारे संबंध संपर्क में आती हैं, तो कभी कभी हमारी मनोस्थिति विचलित सी हो जाती है, एक प्रकार की निराशा या उदासी आ जाती है, या वैसे ही मन में निराशा उदासी नहीं, यूं ही मन में किसी प्रकार की डिस्टर्बेंस है। तो बाबा ने कहा था कि बच्चे झोपड़ी में आके बैठ जाओ और बाबा के साथ बड़े प्यार से रू रिहान करो। आज आप सोचिए, दुनिया में कौन आपको व्यक्ति मिलेगा जिसको आप अपनी मन की बात कह सकते हैं? आज वैसे भी चलो बीके टीचर्स बहने हैं, निमित बहने हैं, आप उनको सुना देते हैं। अच्छा, कभी आप सुना सकते हैं, कभी आप नहीं सुना पाते हैं, या डिस्टेंस है, या समय नहीं है, कुछ भी कारण हो सकता है, लेकिन बाबा ने कहा कि बच्चे मेरे साथ आके झोपड़ी में बैठ जाओ, मुझसे बातें करो। अगर आप बाबा से बातें करेंगे तो क्या होगा? बाबा आपको कोई सॉल्यूशन देगा, और बाबा से जैसे ही बात करेंगे मन हमारा हल्का हो जाएगा, और हमें कैसी फीलिंग आएगी, जैसे मन में जब कोई बात होती है हम अपने दोस्त को सुनाते हैं, तो झोपड़ी में जाना माना बाबा के साथ उस दोस्त का, खुदा दोस्त का अनुभव करना, उसको अपने मन का हाल सुना देना, अपने मन को हल्का कर देना, ये है झोपड़ी में जाने का महत्व। लेकिन रूह रिहान कब होगी? जब खुद रूह बन के बैठेंगे तभी उस सुप्रीम रूह के साथ बात कर सकेंगे। ये इसका महत्व बहुत है, और हमको ऐसा लगता है कि हर भीके बच्चा, उसको ये अनुभव तो अवश्य होना चाहिए कि बाबा मेरा दोस्त है, बाबा मेरा मित्र है, वो मेरे मन का मीत है, उसको मुझे अपनी मन की बातें सुनानी है। तो झोपड़ी में जाना माना खुदा दोस्त का अनुभव करना, अपने आप को हल्का करना, मीठी मीठी उनसे बातें करना, ये है इस दूसरे धाम का महत्व। तीसरी बात, ज्यादा वर्णन करूंगी तो टाइम हो जाएगा, इसलिए मैं आपको संक्षेप में सुना रही हूँ। आप इसको फर्दर और चिंतन करके इसको इलाबोरेट कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। फिर तीसरा बाबा ने जो धाम बताया था वो है हमारा हिस्ट्री हॉल। आपको मालूम है भगवान के जो महावाक्य चले इस प्रांगण में, वो हिस्ट्री हॉल में चले, और वही प्यारे बाबा जो शिव बाबा की मुरली चलती थी, बाबा वहां बैठ के मुरली चलाया करते थे। बच्चों के साथ ब्रह्मा भोजन भी बाबा वहीं किया करते थे हर गुरुवार को, और वो हिस्ट्री हॉल हमें सारे यज्ञ के इतिहास की याद दिलाता है। अब जो वहां पर पुराने चित्र रखे हैं, जो झाड़ का और ये दूसरा जो त्रिमूर्ति का, ये सारे बाबा के समय के चित्र हैं। वहां संदली आदि रखी है, अभी थोड़ा बहुत उसके अंदर परिवर्तन है, बाकी हिस्ट्री हॉल वही है और जो सारे चित्र लगे हुए हैं वो हमें हमारे यज्ञ की जो इतिहास है उसकी स्मृति दिलाते हैं। कैसे कैसे बाबा ने बच्चों को अपना बनाया, कैसे बाबा ने बच्चों की सेवा की। यूं तो आप देखिए बाबा का कोई भी तो ब्लड रिलेशन में तो कोई नहीं था, लेकिन बाबा का यही परिवार वो परिवार हो गया। अब उसी को ही बाबा सब कुछ समझते थे। कैसे छोटे छोटे बच्चों को बाबा ने तैयार किया, किस तरह से विश्व की सेवा करने के लिए तैयार कर दिया। तो हिस्ट्री हॉल क्या है, हिस्ट्री हॉल क्या है, हिस्ट्री हॉल हमें अपने इस परिवार के, इस संस्था की जो स्थापना हुई उस स्थापना के दिनों की याद दिलाता है। तो इसीलिए जब जैसे मान लीजिए जब किसी की फैमिली बहुत जनरेशन से चलती आ रही है और उसकी फैमिली का इतिहास क्या होता है, जगह जैसे कई ऐसे होते हैं उनका, उनके पूरे घर में आप देखेंगे कई किलों में आप जाएंगे वहाँ पूरे राजाई का कुल वहाँ लिखा होता है और जो लोग उससे कनेक्टेड होते हैं वो अपने आप को बड़ा ऊंचा महसूस फील करते हैं। तो आप सोचिए जब हम इस परिवार को देखेंगे, हमारे मम्मा, हमारे बाबा, हमारी दादियां, हमारी दीदियां, हमारे वरिष्ठ भाई, हमारी वरिष्ठ बहनें, उन्होंने हमारे लिए क्या क्या त्याग किया, कितनी तपस्या की। आप सोचो उनकी तपस्या का फल तो हम है ना, उन्हीं की तपस्या का फल आज हम हैं। तो हमको उस परिवार के प्रति प्यार उत्पन्न होता है। जैसे बाबा ने कहा था जिस बच्चे का मुझसे प्यार है उसका मेरी मुरली से भी प्यार है और उसका मेरे परिवार से भी प्यार है। ये बाबा का महावाक्य है। हम कहते हैं हमारा बाबा से परिवार प्यार है, अगर बाबा से प्यार है तो बाबा के परिवार से भी प्यार है। तो ये उसकी ही रचना है सारी, जो आज भी जो हम देख रहे हैं उसी की तो रचना है ना। तो हमें अंदर में कितनी खुशी होगी कि जब हम हिस्ट्री हॉल में जाएंगे वो बातें स्मृति में लाएंगे। जैसे आप देखिए दादा दादी नाना नानी अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को क्या करते हैं, जब वो पुरानी कहानियां सुनाते हैं तो बच्चों को कितनी खुशी होती है। सिमिलरली अगर आज जो हमारे यज्ञ का इतिहास है हम हिस्ट्री हॉल में जाके देखते हैं, जब मुझे याद आता है वो हिस्ट्री हॉल में तो हमको कितनी खुशी होगी। तो ये हिस्ट्री हॉल मुझे मेरे परिवार के प्रति, मुझे परिवार के साथ जोड़ती है, परिवार के प्रति मेरी निष्ठा, मेरी श्रद्धा पैदा होती है। हमको ये लगता है कि हाँ हम सारे एक ही परिवार के हैं। एंड लास्टली बाबा ने कहा था चौथा धाम हमारा है, उस समय बाबा ने कहा था कि बच्चे यदि शक्तिशाली बनने का संकल्प हो, पावरफुल बनने का संकल्प हो तो आप शांति स्तंभ पर आ जाओ, जो टावर ऑफ पीस है, टावर ऑफ नॉलेज है, टावर ऑफ प्यूरिटी है, टावर ऑफ माइट है, उस पर सारे अगर आप देखेंगे प्यारे बाबा की शिक्षाएं इंस्क्राइब्ड है, उस पर लिखी हुई है। उन शिक्षाओं को हम पढ़ते हैं और बाबा ने ये क्यों कहा, मैं समझती हूँ आप में से सभी जो भी यहाँ बैठे हैं, चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, उन्होंने इस बात को जरूर महसूस किया होगा जब शांति स्तंभ के अंदर जाकर हमें बैठते हैं, जैसे वो हमको पुल करता है, जैसे एक प्रकार की मैग्नेटिक पुल जिसको कहते हैं, एक चुंबकीय आकर्षण वहाँ जैसे है, वहाँ से वहाँ पास भी होते हैं ना तो भी हमको लगता है कि जैसे हमें कोई खींच रहा है। और बाबा ने ये कहा था बच्चे ये जो टावर ऑफ पीस है, शांति स्तंभ है, चारों ओर इसके ये प्रकाश स्तंभ, ये शांति स्तंभ चारों तरफ इसकी किरणें फैलेंगी। तो आज मुझे जो प्यारे बाबा हमारे साकार बाबा, उन्होंने इतना पुरुषार्थ किया, जो इतने ऐसे बच्चों को तैयार किया, जो बच्चे अनेक आत्माओं को जागृत करने के निमित्त बने, तो मुझे वहां से वो प्रेरणा मिलती है, उसको देख के मेरे अंदर वो शक्ति उजागर होती है, वो शक्ति मेरे अंदर आती है, हमारे थॉट्स जो है पावरफुल होते हैं, मुझे लगता है कि मुझे भी ऐसा बनना है। जैसे बाबा ने पुरुषार्थ करके कर्मातीत अवस्था को प्राप्त किया वैसे ही मुझे भी बनना है। तो मैं थोड़ा सा पूरा करती हूँ। तो मैं सुना रही थी शांति स्तंभ का, वहां जाने से ही हमको बहुत शक्ति मिलती है। तो इसीलिए ये जो चारों धाम है, अगर हम अपने अपने सेवा स्थानों पर रहते हुए भी यहां पर जाकर इन चारों धाम की यात्रा करते रहेंगे, तो याद रखना कि जब अंत समय आएगा, बाहरी परिस्थितियां बड़ी विकराल रूप लिए हुए होंगी, लेकिन हम इन चारों धामों की यात्रा करने के आदि होंगे, तो ये हमारे मन के अंदर बहुत खुशियां हमको देती रहेंगी। हम उस नशे में रहेंगे, हम उस खुशी में रहेंगे, चाहे हम कहीं भी हों, लेकिन वहां रहते हुए भी हम अपने आप को बाबा के समीप अनुभव करेंगे। ओम शांति। हम अभी उस याद में बैठेंगे।